श्रोताओं, हमारा अगला अध्याय है क्रांतियों का दौर। इस अध्याय में हम मेटरनिक युग और 1830 की क्रांति को सम्मिलित रूप से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मेटरनिक और उसके सहयोगियों ने सोचा था कि पेरिस और वियना में लिए गए निर्णयों ने परिवर्तन की धारा अवरुद्ध कर दी है। विजेताओं के चतुर्मुखी संगठन ने अपने सम्मेलनों और हस्तक्षेप की नीति से हर कहीं यथास्थिति विरोधी तत्वों के दमन करने की सोचा था कि अब यूरोप उनके नियंत्रण में है। उन्हें भ्रम था कि समय की धारा रुक गई है और वे अपने हितों की रक्षा की चिंता से निश्चिंत हो सकते हैं। उनका अस्वस्थ होना स्वाभाविक था क्योंकि स्पेन, नेपल्स या अन्य कहीं जहाँ जहाँ लोगों ने संविधान या अधिकार की मांग की थी, किसी न किसी विजेता की सेना ने वहां सत्यानाश कर दिया था और निरंकुश एक तंत्री पुरानी व्यवस्था लागू कर दी गई थी। मेटरनिक प्रतिक्रियावाद का मसीहा बन बैठा था और स्वयं को ऑस्ट्रिया में तथा ऑस्ट्रिया को यूरोप में प्रतिष्ठित देखकर अपनी सफलता पर मुग्ध था। उसे और उसके जैसे लोगों को पहला झटका 1830 में लगा। 1830 की क्रांति। फ्रांस। नेपोलियन के पतन के बाद बुर्बो वंश के शासक लुई 18वें ने एक बार पुनः सिद्ध कर दिया कि बुर्बो लोग न तो इतिहास भूल पाते हैं और न ही उससे कुछ सीखते हैं। लुई की न कोई प्रतिष्ठा थी और न ही उसने किसी प्रकार की योग्यता का प्रदर्शन ही किया था। वह किसी भी तरह की उग्रता पसंद नहीं करता था और मध्यम मार्ग का अनुसरण करता हुआ स्वयं अपने और अपने वंश की सुरक्षा चाहता था। नए विधान के अनुसार जो लोकसभा चुनी गई थी उसमें उग्रपंथियों का बहुमत था, लेकिन विशिष्ट जनों की दूसरी सभा में बहुमत अनुदार लोगों का था। इसलिए बात बात में विवाद पैदा होता था। चुनाव के नए कानून बने जो उग्रवादियों के पक्ष में थे। विशिष्टों की सभा ने उसे पारित नहीं किया। लोकसभा ने वियना में तय हुए मुआवजे की रकम न देने के लिए शोर मचाया और सभा भंग कर दी गई। नई सभा में नरम मध्यम मार्गियों का बहुमत था, लेकिन मुआवजा दिया जा चुका था और विजेताओं ने फ्रांस से सेना हटा ली। लेकिन धीरे धीरे वामपंथियों की संख्या बढ़ रही थी। इसी बीच प्रेस संबंधी कानून बने। समाचार पत्रों से सेंसर हटा लिया गया। इस पर नरम दल के लोगों ने कान खड़े कर दिए। चुनाव कानूनों में भी इसी तरह परिवर्तन किए गए जिससे उग्रवादियों को लाभ पहुंचा। इसी उलट फेर में पुनः सेंसर कानून लागू किया गया और देश की समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए आक्रामक विदेश नीति लागू की गई। फ्रांस ने स्पेन में हस्तक्षेप किया और वहां संविधान मांग करने वालों को दबा दिया गया। स्पेन में मिली सफलता की आड़ में प्रेस संबंधी कानून और अधिक सख्त बना दिए गए। नए कर लगाए गए। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह सरकार द्वारा नियंत्रित विश्वविद्यालय को सौंपी गई। असंतोष बढ़ने लगा। इस समय लुई की मृत्यु हो गई और उसकी जगह उसका भाई चार्ल्स 10वां गद्दी पर बैठ गया। चार्ल्स क्रांतिकालीन के कष्टों को भूल नहीं पाया था और पुरानी व्यवस्था की कट्टरता का हिमायती था। वह कहा करता था, इंग्लैंड के राजा की तरह शासन करने की अपेक्षा लकड़हारा बनना बेहतर है। उसने एक एक करके कानून बदलना शुरू कर दिए। क्रांतिकाल में जो लोग देश छोड़कर भागे थे उनकी संपत्ति हड़पी गई थी। उनको मुआवजा देने का निर्णय हुआ। जेसुइट लोगों को फिर से आज्ञा दी गई कि वे फ्रांस में आकर अपना धार्मिक और शैक्षणिक कार्य कर सकते हैं। पादरियों का महत्व तो इतना बढ़ गया कि लगता था कि फ्रांस में पादरियों द्वारा और पादरियों के लिए शासन है। वार्गली ने धार्मिक स्वतंत्रता की अवहेलना का विरोध किया। इस तरह की नीतियों से दोनों तरह के उग्रवादियों में असंतोष बढ़ा और विशेष रूप से मध्यम वर्ग उनके विरुद्ध हो गया। चार्ल्स ने लुई 16वां की तरह मंत्री बदल कर समस्या का हल ढूंढने की कोशिश की, लेकिन किसी मंत्री के पास कोई हल नहीं था। अपनी स्वतंत्रता के लिए तुर्कों के विरुद्ध लड़ रहे यूनानियों की मदद करके तथा अफ्रीका में उपनिवेश बनाने का ध्यान बांटने का प्रयास किया गया, परंतु उसका पुरानी व्यवस्था से लगाव इतना स्पष्ट था कि जनता अब भुलावे में नहीं आ सकती थी। कानूनों में परिवर्तन होने पर एक वर्ग संतुष्ट होता तो दूसरा वर्ग असंतुष्ट हो जाता। नए मंत्री पोलिन्याक ने घोर प्रतिक्रियावादी नीति अपनाई। राजा से मांग की गई कि नए मंत्री को बर्खास्त करने के लिए, और राजा ने सभा भी भंग कर दिया। फिर चुनाव और नई सभा में पोलिन्याक के विरोधियों की संख्या और बढ़ गई। जुलाई 1830 में राजा ने कतिपय अध्यादेश जारी किए। यह घोषणा हुए बिना कि सरकारी आज्ञा के कोई नया अखबार नहीं प्रकाशित होगा। हाल ही में हुए चुनाव को अस्वीकृत कर दिया गया। चुनाव के कानून बदल दिए गए और चुनाव की नई तिथि घोषित की गई। अब तक यह स्पष्ट हो गया था कि राजा समझौते के लिए तैयार नहीं है। अध्यादेशों के घोषित होते ही बिजली जैसी दौड़ गई। पेरिस में उपस्थित पत्रकारों और सभा के सदस्यों ने विरोध पत्र तैयार किया। मजदूरों ने आंदोलन शुरू कर दिया। विशेष रूप से प्रेस मजदूरों ने विद्रोह कर दिया। कुछ ही दिनों में पेरिस में पहली क्रांति के दिन लौट आए। सड़कों पर अवरोध खड़े कर दिए गए और अशांति फैलाई गई। सैकड़ों लोग हताहत हुए। लाफायत को चार्ल्स ने नई सरकार का नेतृत्व सौंपा। लुई फिलिप को राज्य का लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया गया और अध्यादेश वापस ले लिए गए। ये निर्णय समयानुसार किए गए होते तो स्थिति संभल सकती थी, लेकिन अब देर हो चुकी थी। पेरिस समझौते के लिए तैयार नहीं था। विद्रोही अपनी तत्काल की सफलता से प्रोत्साहित हुए थे और रुकना नहीं चाहते थे। चार्ल्स ने अपने परिवार के ही एक सदस्य के हक में राज्य का परित्याग कर दिया और इंग्लैंड चला गया। लुई फिलिप ने इस समय एक बुद्धिमानी की। उसने चार्ल्स के पदत्याग की घोषणा कर दी, लेकिन यह नहीं बताया कि उसने अपना उत्तराधिकारी किसे चुना है। इस प्रकार उसने अपने लिए एक स्थान बनाया। कुछ क्रांतिकारी तत्काल गणतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। इनमें छात्र और मजदूर भी थे, जिनका नेता कवान्याक था, परंतु ये लोग अल्पमत थे। पहली क्रांति की स्मृति अभी धूमिल नहीं हुई थी। जब गणतंत्र स्थापित होते ही यूरोप भर के राजघराने फ्रांस के विरुद्ध हो गए थे। क्रांतिकारी इतने बड़े विरोध के मुकाबले के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए राजतंत्र बनाए रखना जरूरी था। दिए के नेतृत्व में मध्य वर्ग और पूंजीपति वर्ग सीमित राजतंत्र का समर्थक था, लेकिन राजा कौन हो? लुई फिलिप सामने था। वह बुर्बो वंश का निकट से संबंधी होने के नाते राजवंश का था, परंतु प्रसिद्ध अपने उदार विचारों के लिए ही था। उसने क्रांतिकाल में सक्रिय हिस्सा लिया था और कुलीनों के विरुद्ध कार्य किया था। कुछ दिनों तक वह जैकोबो लोगों के बहुत निकट था। अंत में उसे ही फ्रांस का राजा बनने के लिए आमंत्रित किया गया। लुई फिलिप इस तरह ईश्वर की अनुकंपा और जनता की इच्छा से फ्रांस का राजा नहीं, फ्रांसीसी जनता का राजा घोषित किया गया। राजा से अध्यादेश का अधिकार ले लिया गया। इतना सब होने के बावजूद न ही प्रजातंत्र की स्थापना हुई, न ही आम जनता की आर्थिक स्थिति में कोई परिवर्तन हुआ। इस क्रांति ने फ्रांस में वही कार्य किया जो 1668 की क्रांति ने इंग्लैंड में किया था। राजा के दैवीय अधिकारों का हमेशा के लिए अंत हो गया। अब वह राष्ट्र की इच्छा से राजा था, इसलिए उसके विरुद्ध जाना और अपने अस्तित्व को ही संकट में डालना था। इस क्रांति के साथ वैधता का सिद्धांत उसके पक्षधरों की गलतियों के साथ ही ध्वस्त हो गया और पुरानी व्यवस्था का लौटना संभव हो गया। नए संविधान में कोई आधारभूत परिवर्तन नहीं किए गए, लेकिन सामंतों और पादरियों का प्रभाव कम हो गया। फ्रांस में ही मध्यम वर्गीय प्रभाव बढ़ने लगा और वियना कांग्रेस द्वारा स्थापित व्यवस्था पर पहला सफल प्रहार हुआ। फ्रांस के इतिहास का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जो 1789 में आरंभ हुआ होता तो फ्रांस का इतिहास कुछ और होता। चार दशक के बाद इस प्रयोग की सफलता संदिग्ध थी। पहली क्रांति के दौरान सड़कों पर नेतृत्व पैदा होने लगा था और मेहनत कश लोगों का प्रभाव बढ़ने लगा था। पूंजीपति वर्ग ने हर हथकंडा अपनाकर सत्ता अपने हाथ में ले ली थी और क्रांति का लाभ स्वयं उठा लिया था। इस बार फिर क्रांति सड़कों पर शुरू हुई और मजदूरों ने अपना हक मांगना शुरू शुरू कर दिया था, लेकिन चालाक मध्य वर्ग और पूंजीपतियों ने स्थिति को समझकर समझौता कर लिया और लुई फिलिप के रूप में एक ऐसा विकल्प प्रस्तुत किया कि जो लोगों को स्तब्ध कर भुलावे में डाल सकता था और बिना कोई वास्तविक परिवर्तन किए ही आम जनता को सत्ता से दूर उलझाए रख सका था। वह क्रांति भी मध्यम वर्ग की सफलता और मेहनत का साधारण जनता के चलते रहने वाले संघर्ष का ही परिचायक था। 1830 में उदार बैंकर लाफियत ने कहा कि अब तो बैंकर लोग ही राज करेंगे, और यह सच साबित हुआ। यह क्रांति यदि फ्रांस तक ही सीमित रहती तो इसका महत्व था, और यह उस देश के इतिहास की ऐसी ऐतिहासिक घटना थी, लेकिन इस समय तक यूरोप की प्रतिक्रियावादी शक्तियां यदि एकजुट हो रही थीं, तो क्रांतिकारी लोगों में भी परस्पर सहयोग बढ़ रहा था। असंतोष और परिवर्तन की उत्कंठा आकांक्षा यूरोप के अधिकांश देशों में व्याप्त थी, इसलिए फ्रांस की घटनाओं ने यूरोप के अन्य देशों पर भी प्रभाव डाला। अगला हेडिंग है बेल्जियम की स्वतंत्रता। आदमी की प्रकृति पर जीत के जीवन प्रमाण के रूप में नीदरलैंड ने फिलिप द्वितीय के शासनकाल में स्पेन की प्रभुता के विरुद्ध विद्रोह किया था। पराजय के समय साम्राज्यवाद ने फूट डालने का प्रयास कर नीदरलैंड के उत्तरी और दक्षिण प्रदेशों में फूट डाल दी थी। उत्तरी क्षेत्र प्रोटेस्टेंट और जर्मन प्रभाव के करीब था, दक्षिणी क्षेत्र कैथोलिक और फ्रांसीसी प्रभाव में था। इसलिए स्पेन के प्रशासकों ने दक्षिणी क्षेत्र में, जो बाद में बेल्जियम कहलाया, फूट डालने में सफलता प्राप्त कर ली थी। वेस्टफेलिया की संधि में, जब नीदरलैंड, इसको हॉलैंड भी कहते हैं, कि स्वतंत्रता को मान्यता मिली तो बेल्जियम गुलाम बना रहा, और यूट्रेक्ट की संधि के बाद ऑस्ट्रिया के प्रभुत्व में चला गया। इस प्रकार अपने देश की लड़ाई में अलग हो जाने की उसे काफ़ी कीमत चुकानी पड़ी। तब से बेल्जियम पर ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व था। नेपोलियन ने इसे जीतकर फ्रांस में मिला लिया, लेकिन जब वियना में बंदरबांट हो रही थी तो फ्रांस के चारों ओर शक्तिशाली देशों ने घेरा डालने के उद्देश्य से बेल्जियम हॉलैंड को दे दिया। इस तरह राष्ट्रीय भावनाओं की अवहेलना कर बेल्जियम को ऐसे देश से बांध दिया गया था जिसमें घृणा बेल्जियम की परंपरा बन गई थी। बेल्जियम और हॉलैंड में भाषा, धर्म, व्यवसाय, हर चीज़ में अंतर था। संख्या में ज़्यादा होते हुए भी बेल्जियम लोगों को हॉलैंड में डच लोग घृणा करते थे। इसके अतिरिक्त ज़्यादातर नौकरियों में उन्हें स्थान नहीं मिलता था। सारे प्रशासन का केंद्र हॉलैंड की राजधानी हेग था। ब्रुसेल्स में लोकसभा की बैठक कभी भी बुलाई नहीं जाती थी। राजभाषा केवल डच थी। बेल्जियम के हॉलैंड में केवल शोषण होता था। आटे और गोश्त पर नए कर लगा दिए जा रहे थे, और कैथोलिक पादरियों के हाथ में सरकार शिक्षा व्यवस्था अपने हाथ में ले रही थी। अतः इस थोपे हुए संबंध के विरुद्ध बेल्जियम की जनता और वहाँ के राजनेता शुरू से ही क्षुब्ध थे और उसे तोड़ने के लिए सक्रिय थे। पेरिस की जुलाई की क्रांति की खबर जब ब्रुसेल्स पहुंची तो वहां भी विद्रोह शुरू हो गया। हॉलैंड के शासक विलियम ने विद्रोह का दमन करने के लिए सेना भेजी, परंतु उत्कट विरोध के सामने लौटना पड़ा। रूस अपनी समस्याओं में उलझा हुआ था और फ्रांस तथा इंग्लैंड बेल्जियम के पक्षधर थे। ऐसे हालत में वियना समझौता लागू करने के लिए कौन हस्तक्षेप करता। फलतः परिस्थितियां अनुकूल देखकर राजधानी ब्रुसेल्स में बेल्जियम की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई। लंदन में सम्मेलन बुलाया गया और बेल्जियम की स्वतंत्रता को मान्यता मिल गई। नए राज्य का ताज किसे दिया जाए? पहले नमूर के ड्यूक का नाम लिया गया, लेकिन इंग्लैंड सहमत नहीं था, इसलिए सर्वसम्मति से सैक्स कुबुर्ग के शासक लेवोपोल्ड को बेल्जियम का राजा घोषित कर दिया गया। इसे एक बार और सुने। लेवोपोल्ड को बेल्जियम का राजा घोषित कर दिया गया। हॉलैंड ने स्वीकार नहीं किया और आक्रमण कर दिया। फ्रांस ने बेल्जियम की ओर से हस्तक्षेप किया। हॉलैंड को पीछे हटना पड़ा, लेकिन उसने एंटवर्प, लेकिन उसने एंटवर्प नामक व्यावसायिक नगर नहीं छोड़ा। अंतोगत्वा 1839 में लंदन में एक और सम्मेलन हुआ और एंटवर्प सहित बेल्जियम की स्वतंत्रता को हॉलैंड ने भी स्वीकार कर लिया। इस प्रकार जुलाई की क्रांति से ही एक नए स्वतंत्र देश बेल्जियम का जन्म हुआ। इन क्रांतियों का असर यूरोप के अन्य देशों पर भी पड़ा। जर्मनी और इटालियन राष्ट्रवादियों ने विद्रोह का झंडा बुलंद किया। दोनों ही क्षेत्रों में मेटरनिक का प्रभाव था और उसने जर्मनी के राज्यों की स्वतंत्रता और निकटता तथा इटली के कार्बोनारी की क्रांतिकारी परिवर्तनों की इच्छाओं का दमन कर दिया। जर्मनी और इटली की राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों को एक बहुत बड़ा झटका लगा। इसी तरह पोलैंड, जिसका 3 बार विभाजन कर उसे समाप्त कर दिया गया था, फ्रांस की क्रांतियों से प्रेरणा प्राप्त कर जुलाई की क्रांति पहुँचते पहुँचते ही राष्ट्रभक्तों ने विद्रोह कर दिया। लेकिन पोलैंड को मुट्ठी में रखने के लिए जारकृत संकल्प था और वहाँ भी क्रांतिकारियों को कोई सफलता नहीं मिल पाई। इन क्रांतिकारियों का रचनात्मक प्रभाव इंग्लैंड की राजनीति पर भी पड़ा। संवैधानिक राजतंत्र होते हुए भी वहाँ सामंतों की प्रधानता थी। राजनीतिक सत्ता उनके हाथ में थी, जबकि आर्थिक सत्ता पूंजीपतियों के हाथ में थी। 1830 के बाद सुधार कानून बनने शुरू हुए, जिससे राजनीतिक अधिकारों का विस्तार हुआ और संपत्ति कर तथा चुनाव संबंधी नियम और अधिक उदार बनाए गए। इस क्रांति ने यह स्पष्ट कर दिया कि पुरानी व्यवस्था पुनः थोपना असंभव है और परिवर्तन की आकांक्षा मध्य वर्ग में नहीं, मेहनतकश मजदूरों में भी व्याप्त हो रही है तथा वे भी कुछ करने पर आमदा हो रहे हैं। लेकिन साथ साथ यह भी सच था कि नेतृत्व पूंजीपति वर्ग के हाथ में था और वे पुरानी व्यवस्था को असह्य मानते थे, क्योंकि वह आर्थिक परिवर्तन के मार्ग में अवरोध उपस्थित करती थी। लेकिन वे किसी ऐसे परिवर्तन के लिए तैयार नहीं थे जिसमें शक्ति का स्रोत वे न रहकर मजदूर हो जाएं। उनका संघर्ष दो तरफा था, एक तरफ सामंतशाही और निरंकुश एक तंत्र से उनका विरोध था, तो दूसरी ओर श्रमजीवी वर्ग से उनका संघर्ष सुसुप्त और अंदर अंदर चलता रहता था, क्योंकि उनके लिए शोषित वर्ग को अपने साथ और अपने पीछे रखना जरूरी था। इसलिए 1830 की क्रांति ने स्पष्टतः बहुत बड़े परिवर्तन नहीं किए, लेकिन यूरोपीय महाद्वीप के राज्यों में भी राजत्व का आधार दैवी इच्छा नहीं, जनता की इच्छा बनने लगी और इसलिए फ्रांस की पहली क्रांति का क्रम ही 35 वर्षों के अंतराल के बाद फिर जारी हुआ। 1848 की क्रांतियां, अगला हेडिंग है 1848 की क्रांतियां। बच्चे एक लाइन से ईंटें खड़ी करके जब पहली ईंट गिराते हैं तो पूरी एक कतार एक एक कर गिरने लगती है। 1848 में कुछ ऐसा ही हुआ। वियना कांग्रेस में संगठित प्रक्रियावाद यूरोप के सहज विकास के मार्ग में दीवार बनकर खड़ा हो गया था। उस दीवार पर इस बीच हर प्रहार नाकाम हुआ था। मेटरनिक उसका प्रखर प्रहरी था, लेकिन जब दीवार से टकराने वाली प्रगतिशील धारा का प्रवाह बढ़ा तो वह बालू की दीवार सिद्ध हुई। 1830 की क्रांति अनिवार्य नहीं थी। फ्रांस में थोड़ा सूझबूझ से उसे टाला जा सकता था, क्योंकि न तो वैचारिक पक्ष बहुत मजबूत और विस्तृत था, न ही संगठन पक्ष। इस बार दूसरी बात थी। पिछले दशक में यूरोप के वैचारिक जगत में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए थे। सुधारवादी विचारधारा के स्थान पर समाज के ढांचे में अमूल परिवर्तन की बात होने लगी थी। प्रतिरोधों के बावजूद औद्योगिक नगर की लहर यूरोप तक भी आ पहुंची थी। नगरों में मजदूरों की संख्या बढ़ रही थी और साथ ही बढ़ रहा था उनका असंतोष तथा संगठन। अब यह स्पष्ट हो गया कि समाज में परिवर्तन राजा के बदलने या सुधारों की लीपापोती करने से नहीं होता। क्रांतियों का स्रोत 1848 की क्रांतियों के पीछे प्रतिक्रियावादी शक्तियों की दमनकारी नीति के बावजूद हो रहे मौलिक परिवर्तन थे, जो आर्थिक जीवन और वैचारिक जगत को तेजी से प्रभावित करते जा रहे थे। मेटर्निख युग का मूल मूलतंत्र ही परिवर्तन का विरोधी था। आवश्यक सुधार नहीं किए जा रहे थे। सुधार शासकों के लिए एक तरह से सेफ्टी बल्ब का काम करते थे। यूरोप के शासक इसके लिए तैयार नहीं थे। वे बाहरी शांति के नीचे परिवर्तनों की धधकती आकांक्षा नहीं देख पा रहे थे। क्रमिक परिवर्तन और सुधारों के अभाव में असंतोष और आक्रोश का विस्फोट अनिवार्य था। वास्तविकता यह थी कि 18वीं शताब्दी के अंत में औद्योगिक क्रांति ने इंग्लैंड का अर्थतंत्र झकझोर डाला। अब पश्चिमी यूरोपीय देशों में भी औद्योगिकरण और मशीनों का प्रयोग तेजी से हो रहा था। इसी पूंजीवादी अभ्युत्थान के कारण परंपरागत अर्थतंत्र टूटता जा रहा था और उसका नया रूप अभी पूरी तरह विकसित नहीं हो रहा था। परिणाम यह कि पश्चिमी यूरोपीय देश भारी अर्थ संकट से गुजर रहे थे। उत्पादन के तरीकों में परिवर्तन अनिवार्यतः पूरे समाज को बदल डालता। इसलिए पश्चिमी यूरोप जीवन के हर क्षेत्र में उद्वेलित था। अब एक देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक हो गया था। इसलिए इंग्लैंड की अपेक्षा उन्नत व्यवस्था के मुकाबले पश्चिमी यूरोप घाटे में रहता था। वहाँ चीज़ों के दाम बढ़ रहे थे। शासकगण स्थिति को समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए स्थिति उनके नियंत्रण में नहीं रह गई थी। पूंजीपतियों की शक्ति बढ़ रही थी और वह तदानुकूल राजनीतिक सत्ता पर भी अधिकार चाहने लगे थे। नगरों की जनसंख्या बढ़ रही थी और मजदूर गांव से शहर आकर और अधिक संतुष्ट हो रहे थे। मजदूरों के बढ़ने और उनके एक साथ रहने के कारण व्यक्तिगत असंतोष अब सम्मिलित रूप से एक ताकत बनता जा रहा था। मजदूरों को धीरे धीरे यह पता चल रहा था कि इन विषमताओं के मुख्य कारण उनके अपने और समाज की स्थिति के मूल में निहित है और सम्मिलित आंदोलन को भी अब बल मिल रहा था। ऐसी स्थिति का विचारों पर प्रभाव पड़ना भी स्वाभाविक था। धीरे धीरे ज्ञानोदय का काल और उसके बाद विकसित उदारवाद का खोखलापन स्पष्ट होने लगा था। औद्योगिक विकास ने समाज के बारे में नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता पैदा कर दी थी। फ्रांस, इंग्लैंड और जर्मनी में आर्थिक पक्षों की प्राथमिकता स्वीकार की जाने लगी थी। जब जनसाधारण और श्रमिकों को प्रजा मानकर उनकी भलाई करने के ढकोसलों का भंडाफोड़ होने लगा था और उनसे वास्तविक अधिकारों की बात की जाने लगी थी, समाज का नया विश्लेषण अब समाजवाद के नाम से जाना जाने लगा। फ्रांस में सैम सीमो और फूरिये ने समाजवाद की कल्पना की। हालांकि इस संदर्भ में उनके विचार काल्पनिक थे, लेकिन समाज में मौलिक परिवर्तन करने की आवश्यकता को रेखांकित अवश्य करते थे। इस दशा में ऐतिहासिक योगदान जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स का था। उसने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की और मानव विकास के उत्पादन और विनिमय के बदलते तरीकों के साथ विभिन्न वर्गों के संघर्षों को निर्णायक बताया। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद न केवल इतिहास की तर्कसंगत व्याख्या करता था, उसके वर्तमान तथ्यों का विश्लेषण और भविष्य की रूपरेखा भी थी। मार्क्स के विचारों में मनुष्य की अनिवार्य प्रगति की आश्वस्ती थी और पूंजीवादी व्यवस्था के गर्भ में समाजवाद और मजदूरों के राज्य के निश्चित रूप से जन्म लेने की तर्कपूर्ण प्रतिपादन भी था। 1848 में ही विशद अध्ययन, व्यापक अनुभव और समझदारी के आधार पर मार्क्स ने छोटी सी पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इसे एक बार और सुने। 1848 में मार्क्स ने एक छोटी सी पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इस पुस्तक में उसका समाजवादी विचारधारा का सार था और मजदूरों का आह्वान था। सर्वहारा के पास खोने के लिए बंधनों के अतिरिक्त कुछ नहीं है और पाने के लिए सारी दुनिया है। इसलिए दुनिया के मजदूरों एक हो, यह एक ऐतिहासिक समझ और क्रांतिकारी युग का आह्वान था। इस तरह यह स्पष्ट था कि 1848 की क्रांतियों के मुख्य कारण अलग अलग देशों में चाहे जो हो, उनके मूल में उपयुक्त आधारभूत कारण ही मौजूद थे। अगला हेडिंग है लुई फिलिप। लुई फिलिप ने फ्रांस में नई चेतना का संचार किया था। उसे नागरिक राजा कहा जाने लगा क्योंकि वह क्रांतियों की लड़ाई में शामिल हुआ था। मध्य वर्ग और मजदूरों तक से उसके अच्छे संबंध थे। देश में नेपोलियन की गाथाओं के बढ़ते प्रभाव के प्रति भी वह संवेदनशील था और उसने इंग्लैंड से अनुरोध करके नेपोलियन की अस्थियां सेंट हेलेना से फ्रांस मंगवा ली थी। मृत नेपोलियन का उसने स्वागत किया था जितना कभी जीवित नेपोलियन का हुआ करता था। सेन नदी के किनारे एक भव्य मकबरे में बड़ी शान शौकत से अस्थियां स्थापित की गईं। नेपोलियन के विचारों का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा था और उसकी स्मृति से फ्रांसीसी जनता भावुक और सचेष्ट होने लगी थी। दूसरी ओर फ्रांस में उद्योगों की वृद्धि हो रही थी और वहां मजदूरों में अशांति और उनके बीच समाजवादी विचारों का जोर बढ़ रहा था। ऐसी स्थिति में लुई फिलिप के लिए बहुत गतिशील और प्रभावशाली नीति अपनाना जरूरी था, लेकिन प्रारंभिक उत्साह के बाद उसकी कमजोरियां बाहर झांकने लगी। उसके पद ग्रहण करने के बाद संविधान में थोड़े परिवर्तन किए गए थे। अध्यादेश जारी करने का अधिकार सीमित कर दिया गया था। लोकसभा को कानून प्रस्तावित करने का अधिकार मिल गया था। प्रेस पर लगाया गया प्रतिबंध समाप्त कर दिया गया था। मताधिकार का भी थोड़ा विस्तार हुआ था, लेकिन वास्तव में लुईप का शासन पूंजीपतियों के हक में उन्हीं पर आधारित था। यह निश्चित था कि ऐसे शासन का श्रमिक वर्ग विरोध करेंगे। मार्क्स के अनुसार फिलिप का राजतंत्र एक संयुक्त कंपनी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की तरह था जो राष्ट्र की संपत्ति का इस्तेमाल कर रहा था और जिसका लाभ मंत्रियों, सभा के सदस्यों और सीमित मतदाताओं के बीच बांट लिया जाता था। फिलिप की हैसियत इस कंपनी में निदेशक मात्र थी और उस समय फ्रांस में कई तरह की विचारधाराओं का प्रसार हो रहा था। प्रगतिशील लोग प्रजातांत्रिक और सामाजिक सुधारों की मांग कर रहे थे। वे चाहते थे कि फ्रांस की सरकार दुनिया भर में उन लोगों की मदद करे जो शोषित या पीड़ित हैं। अनुदार लोग इसके ठीक विपरीत सोचते थे। वे वैधता के पक्षधर बुर्बो वंश की पुनर्स्थापना चाहते थे और तो गणतंत्रवादी लोग राजतंत्र का अंत ही चाहते थे। बोनापार्टिस्ट दल नेपोलियन की उपलब्धियों और उसके समय फ्रांस की गरिमा का प्रचार कर नेपोलियन की गाथा से फ्रांस को अभिभूत कर देना चाहता था। उसके प्रभावों से पेरिस की सड़कों का नाम नेपोलियन के युद्धों के नाम पर रखा जा रहा था। इस समय पेरिस की सबसे प्रसिद्ध सड़क सांजे लीजे की एक छोर पर विजय द्वार का निर्माण किया गया। इन विचारकों की आपसी टकराहट से बराबर दंगे होते रहते थे। बुर्बू समर्थकों ने लावांदे में विद्रोह किया था। गणतंत्रवादियों ने पेरिस और लियों ने आंदोलन किए थे। हड़तालें हो रही थी। फिलिप की हत्या का भी प्रयत्न किया जा रहा था। इन चीजों से सख्ती से निपटने के लिए किसी तरह की संस्था बनाने के लिए सरकार की आज्ञा अनिवार्य कर दी गई थी। समाचार पत्रों पर फिर से नियंत्रण लगाया गया। पत्रकारों को सजा दी जाने लगी। नए कानून और उन्हें लागू करने के लिए नई अदालतें बनाई गईं। निरंकुशता बढ़ने लगी। लोकसभा पर भ्रष्ट तरीके अपनाकर नियंत्रण किए जाने लगे। मताधिकार पुनः सीमित कर दिया गया। सभा के सदस्यों को सरकारी प्रलोभन देकर बस में किया जाने लगा। फिलिप की बढ़ती प्रतिक्रियावादिता ने विरोधियों को और अधिक उग्र कर दिया। पहले उन्होंने यह सोचा कि फिलिप के विरुद्ध संघर्ष पार्लियामेंट में हो, लेकिन मोले ने यह निश्चित किया कि अंतिम संघर्ष पूरे राष्ट्र के सामने हो, क्योंकि वह जानता था कि राष्ट्र उसके साथ है, फिलिप के साथ नहीं। विदेश नीति के क्षेत्र में क्रियाशीलता का प्रदर्शन किया गया। दिए एक सख्त नीति का पक्षपाती था। मिस्र के शासक मोहतम अली ने जब तुर्क के सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया तो फ्रांस ने मेहमत का समर्थन किया, लेकिन अन्य राज्यों द्वारा तुर्की का समर्थन कर देने के कारण फ्रांस अकेला पड़ गया। दिए युद्ध का समर्थक था, इसलिए उसे मंत्री पद से हटना पड़ा। फिलिप ने युद्ध के झमेले में पड़ना उचित नहीं समझा। दिए के बाद सुप्रसिद्ध इतिहासकार गीजो को मंत्री बनाया गया। वह इंग्लैंड से मैत्री बढ़ाना चाहता था, इसलिए फिलिप की ढुलमुल नीति ने इंग्लैंड को भी रुष्ट कर दिया। कुल मिलाकर फिलिप की विदेश नीति से नीति भी जनता को संतुष्ट नहीं कर सकी थी और न ही इससे फ्रांस का कभी सम्मान बढ़ा। इस वातावरण में भी फ्रांस में उद्योगों की वृद्धि हो रही थी। मजदूरों को बिना छुट्टी 12-12 घंटे काम करना पड़ता था। मजदूरी थोड़ी बहुत मिलती थी, छोटे छोटे बच्चों तक को काम करना पड़ता था, फिर भी उनके घर का खर्च चलाना मुश्किल था। कारखानों में काम करने के हालत बहुत अस्वस्थप्रद थे। मजदूरों को संगठन बनाने की मनाही ही थी, इसलिए प्रशासन और राजनीति में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। इन असंतुष्ट मजदूरों के बीच समाजवादी विचारधारा का तेजी से प्रचार प्रसार हो रहा था। यद्यपि समाजवादी विचारक आपस में सहमत नहीं थे, परंतु सभी मजदूरों के हित के पक्षधर और उनके लिए संघर्ष की पृष्ठभूमि बनाने में लगे हुए थे। प्रूधो, लरू और लुई ब्ला जैसे प्रसिद्ध विचारक फ्रांस की आर्थिक स्थितियों और पूंजीवादी स्वरूप का विश्लेषण कर मजदूरों की संघर्षकारी भूमिका मजबूत कर रहे थे। इसी बीच दो महत्वपूर्ण घटनाएं सामने आईं। 1845-46 में फसलें खराब हो गईं, रूखा सूखा भोजन भी कठिन हो गया, भूख से तंग लोग दंगे शुरू कर दिए और सामान्य लोगों का असंतोष बहुत बढ़ गया। दूसरे 1847 में इंग्लैंड के अर्थतंत्र को बहुत बड़ा झटका लगा, बैंक असफल होने लगे और उद्योग बंद हो चले थे। इंग्लैंड सबसे उन्नत औद्योगिक देश था और उसकी आर्थिक मंदी सारे यूरोप पर असर पड़ना अनिवार्य ही था। जनवरी 1848 में तॉकविल ने पार्लियामेंट में गरज कर पूछा, क्या अब भी कल का इंतजार होगा? गिजो हमेशा की तरह निष्क्रिय मुस्कुराता रहा। धीरे धीरे फ्रांस के सभी दल लुई फिलिप के विरुद्ध हो गए। वैधतावादी इसलिए विरोधी हो गए कि फिलिप बुर्बो वंश का नहीं था और शुरू से जैकोबू रह चुका था। बोनापार्टिस्ट इसलिए विरुद्ध थे कि नेपोलियन के समर्थकों के मार्ग में अवरोध था। गणतंत्रवादी इसलिए रुष्ट थे कि वह क्रांति के मार्ग में रुकावट था। इस पृष्ठभूमि में ही फरवरी 1848 की घटनाओं को देखना चाहिए। पेरिस में प्रीतिभोजों का आयोजन किया जाने लगा। वे लोगों को मिलने जुलने और बातचीत करने के बहाने बुलाने लगे। सरकार ने इस पर रोक लगा दिया। इस तरह पेरिस में दंगे शुरू हो गए। सड़कों की नाकेबंदी कर दी गई, सेना बुला ली गई और सेना ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। यह अप्रत्याशित घटना थी। लुई फिलिप घबरा गया और उसने कुछ सुधारों की घोषणा कर दी। गिजो को हटना पड़ा। गिजो के घर की रक्षा करते समय सैनिकों ने भीड़ पर गोली चला दी। मृत शहीदों के लिए भीड़ उत्तेजित हो गई। सड़कों पर लड़ाइयाँ चलती रहीं और अप्रत्यक्ष रूप से गणतंत्र की मांग की जाने लगी। भीड़ ने मांग की कि 1830 के समान गणतंत्र के बदले राजतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती। कभी लामार्तिन भी भीड़ को बस में कर सकने में असमर्थ था। लुई को मजबूरन त्यागपत्र करना पड़ा। 1848 की क्रांति में भी फ्रांस के बुर्जुआ की प्रमुखता बनी रही, पर यह निश्चित था कि धनिकों की जगह अब छोटे पूंजीपतियों का प्रभाव बढ़ चला था। जब अस्थायी सरकारें बनी तो लामार्तिन ने इस बात का विरोध किया कि पेरिस के लोग गणतंत्र की घोषणा कर दें। धीरे धीरे सारे महत्वपूर्ण पद पूंजीपतियों और मध्यम वर्ग के लोगों ने आपस में बांट लिए, लेकिन इस बार मजदूर पहले से अधिक संगठित थे। उनका नेता रास्पाई ने साफ कह दिया कि यदि गणतंत्र की घोषणा नहीं हुई तो मजदूर स्वयं निर्णय करेंगे। इस चेतावनी का असर हुआ कि 2 घंटे के अंदर ही सारा नगर फ्रांसीसी गणतंत्र के नारों से गूंजने लगा। लुई फिलिप का पतन इसलिए हुआ कि उसने समय को ठीक से नहीं पहचाना। उसकी मध्यमार्गी नीति का कोई विशेष वर्ग पूरी तरह पक्षधर नहीं हो सका था। उसने उस वर्ग को साथ रखना पसंद किया जो राजनीतिक सत्ता से उसकी दिलचस्पी नहीं रखता था इतनी आर्थिक सत्ता में। बुर्जुआ वर्ग का केवल धनिक बैंकर वर्ग ही इससे संतुष्ट था। औद्योगिक पूंजीपति अभी भी अल्पमत में थे। फिलिप के समर्थक पूंजीपति वर्ग के प्रशासक का अनुभव नहीं था। ऐसी स्थिति में फिलिप के शासन तंत्र का कमजोर होना स्वाभाविक था। फिलिप के पास राजनीतिक और सामाजिक सुधारों का कोई कार्यक्रम नहीं था। विदेश नीति में ऐसी सफलता नहीं मिली कि जिससे जनता गौरवान्वित होती। दूसरी ओर गणतंत्रवादियों ने सुधार के अनेक कार्यक्रम घोषित कर रखे थे। बोनापार्टिस्ट दल अतीत की गरिमा के बूते अपना प्रभाव बढ़ा रहा था। फ्रांस की आर्थिक स्थिति का दूरदर्शी आकलन करने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। लुई के पास कुछ नहीं था, सब कुछ स्थिर हो चला था। गीजो के बारे में कहा जाने लगा कि वह कुछ नहीं करता, यही उसकी शक्ति और यही उसकी कमजोरी थी। सभा में लामार्टिन ने चिल्लाकर कहा था कि फ्रांस एकदम उब रहा है, लेकिन फिलिप की गति प्रदान करने की समर्थता नहीं थी। ऐसे में उसकी दुर्गति अनिवार्य थी। फिर भी सुधारों की स्थिति संभाली जा रही थी, लेकिन लुई नेपोलियन कहा करता था कि हम सुधार नहीं करते, क्रांति करते हैं। फ्रांस में यही हुआ।